नमस्कार जी, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश शारदा, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा की तरफ से। आज हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट टिप्स के बारे में, जो अस्थमा के केसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। आप सबको पता है कि आजकल के टाइम में अस्थमा जैसी भयंकर बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। पहले के समय की बात करें तो ये बीमारी सिर्फ बुज़ुर्ग लोगों में ही पाई जाती थी, जो 60 या 70 साल से ऊपर जिनकी आयु सीमा रहती थी। लेकिन आज इस बीमारी की कोई सीमा नहीं है। छोटे से छोटे बच्चों के साथ ये बीमारी जो है वो जन्म ले रही है। नवजात शिशुओं को ये बीमारी हो रही है, थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे उनको ये बीमारी है, टीनेजर्स को है, एडल्ट्स को है, और जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं 40 या 50 साल के, उन सबको ये बीमारी हो रही है। इस बीमारी के बहुत ज़्यादा कारण हैं। हर बीमारी के पीछे, हर इंडिविजुअल का, हर व्यक्ति का कारण इस बीमारी के पीछे जो है वो अलग रहता है। सबके पीछे सेम कारण काम नहीं करते। लेकिन अगर मैं आपको आयुर्वेदिक दृष्टि के साथ ये बीमारी समझाऊं तो इस बीमारी को समझना बहुत ज़्यादा आसान है। ज़्यादातर इस बीमारी का ओरिजिन फेफड़ों में पाया जाता है, और ये बीमारी तब होती है जब हमारे शरीर में वात और कफ दोष जो है वो पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा कफ भर जाता है तो हम लोगों को खांसी की दिक्कत आना शुरू हो जाती है, कई केसेस में रेशा निकलता है, कई केसेस में बलगम भी निकलता है, चॉक्ड हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। और अगर इसी बीमारी के साथ बात की अधिकता पाई जाए तो ऐसे केसेस में उन लोगों को कफ बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन उनका सांस रुक जाता है, उनको सडनली अस्थमा के अटैक्स आ जाते हैं, उनको सांस लेने के लिए या सांस छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और विद इन सेकेंड्स ऐसे लोग जो हैं वो पैनिक भी हो जाते हैं, और सडनली विद इन सेकेंड्स अस्थमा के अटैक्स भी आ जाते हैं। तो ये दो तरह से परसेप्शन है आयुर्वेदिक सिद्धांत के ऊपर, कि जब बात बढ़ेगा तो आप लोगों को कफ उस लेवल पे नहीं होगा, जब कफ बढ़ेगा तो रेशा, बलगम, खांसी, जुखाम, साइनस, ये सारे इसी चीज़ के ही एक रूप हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं बाहर आना शुरू हो जाएंगी। आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी टिप्स बताऊंगी कि जो भी लोग इस बीमारी के साथ पीड़ित हैं, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो इन्हेलर्स ले रहे हैं लेकिन उसके साथ भी उनको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है सांस लेने में, या जो लोग बहुत लंबे समय से स्टीरॉयड्स ले रहे हैं, मेड्रोल ले रहे हैं, या और भी एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स जिन लोगों की चल रही हैं, ऐसे लोगों को अपनी पूरी दिनचर्या में कैसी टिप्स उनको यूज़ करनी चाहिए, जिसके साथ जितनी भी वो एलोपैथिक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं वो धीरे 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 करके कम होती जाए, और आपका स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरह से बेहतर हो पाए और आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकें। सबसे पहले ऐसे रोगियों को अपने शरीर को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। जिन लोगों को भी ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की प्रॉब्लम है, या अस्थमैटिक अटैक्स आते हैं, या जिन लोगों को रेशा, बलगम, खांसी, जुखाम है, ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनको कब्ज की शिकायत बिल्कुल भी नहीं हो। कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन, पेट पूरी तरह से दिन में एक या दो बार पूरी तरह से साफ हो जाना चाहिए, और जिससे कि आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होना शुरू हो जाएगी। उसके साथ क्या होगा कि हमारे स्टमक में, हमारी आंतों में, बड़ी आंतों में जितना भी एक्सेस में कफ, म्यूकस या रेशा है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। आपका इंटरनल पैसेज जो है वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाता है, कम्प्लीट इवैक्यूएशन होती है, और जितने लोगों को बात की अधिकता है उन लोगों को एक्सेस में जो गैस्ट्राइटिस की उत्पत्ति होती है, उसके साथ भी हमारा सारा जो इंटेस्टाइन्स है, हमारी पेट है, वो पूरी तरह से क्लियर होने के बाद उन लोगों की बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है, शरीर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, और उसके साथ जितना भी हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है बॉडी बहुत अच्छे लेवल पर करती है, तो उनका सारा दिन बहुत अच्छे से जाता है। तो ये थी पहली टिप कि किसी भी ऐसे पेशेंट को कब्ज की शिकायत नहीं रहनी चाहिए। दूसरे जिन लोगों को इस बीमारी की प्रॉब्लम है, दूसरे नंबर पे ऐसे सारे ही मरीजों के लिए ये मेरी तरफ से एक हिदायत है कि आप हमेशा गर्म पानी का सेवन करें। कोसा पानी ही आपने पीना है सारे दिन भर, या शाम को जब भी आप फ्रिज का कोई ठंडा पानी ना पिए, कभी कभार गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो आपके लिए एडवाइज्ड होता है घड़े का पानी, क्योंकि जो घड़े का पानी है उसका जो नेचर है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, वो आपके शरीर की प्यास को भी बुझाता है और शरीर को पूरी तरह से शांत भी करता है। लेकिन अगर हम ठंडा पानी यूज़ करते हैं या फ्रिज का पानी यूज़ करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा उसका नेचर बदल जाता है। आपने नोट किया होगा कि आपको वो 2 मिनट के लिए शांति तो देता है लेकिन आपके शरीर के पित्त को पूरी तरह से शांत नहीं कर पाता, उल्टा उसका नेचर जो है वो गर्म होता है, वो शरीर में पित्त की उत्पत्ति करता है और बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन विद इन बॉडी आना शुरू हो जाती है, जो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तीसरे नंबर की टिप की मैं बात करूं तो ऐसे पेशेंट्स के जो लंग्स के मसल्स होते हैं और जो लंग्स की कंप्लीट हम कह सकते हैं कि क्षमता होती है, स्ट्रेनिंग जो पावर होती है उसको बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन होती है। लंग्स हमारे इस तरह से होते हैं, बलून के जैसे उनका आकार है, जैसे जैसे हम सांस लेंगे वो पूरी तरह से फूलते जाएंगे, उनका आकार बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम सांस छोड़ेंगे बाहर तो वो पूरी तरह से सिकुड़ते जाते हैं। तो उसके लिए ताकि वो अपनी कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करे और हमारे जो फेफड़े हैं उनका जो मस्कुलर पावर है या स्ट्रेंथ है वो कैसे बढ़ाई जाए, ऐसे पेशेंट्स के लिए साइकिल चलाना बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। अगर आप लोगों को साइकिल चलाने आती है तो 5 मिनट से लेके 10 मिनट या आधा घंटा धीरे 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 करके अपना टाइम बढ़ाते चले और साइकिल चलाना शुरू करें। लेकिन धुंध के मौसम में, बारिश वाले मौसम में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जहाँ पे एनवायरनमेंट कंडीशंस होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मौसम बिल्कुल अनुकूल रहता है, बोलने का मतलब कि आपके शरीर के अंदर का तापमान और शरीर के बाहर का तापमान, एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो एक लेवल पे हो, तब आप ये जरूर एक्सरसाइज करें, इसको एज एक्सरसाइज करें और आप देखेंगे 1 महीना करने के बाद कि आपको ब्रीदिंग की सारी डिफिकल्टीज जो है वो धीरे धीरे इरेज होती जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट टिप हमारी आ जाती है कि ऐसे लोगों को पूरी तरह से अपने लंग्स की, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए बैलून फुलाने चाहिए। जो हम घरों में बच्चों को खेलने के लिए देते हैं वो वाले बैलून भी आप लेके आ सकते हैं। कोशिश कीजिए रोज आप 5-10 मिनट लगा के पूरी तरह से बैलून गुब्बारा फुलाएं। जब गुब्बारा फूल जाए तो उसको बांध के आप बच्चों को खेलने के लिए भी दे सकते हैं। आप नेक्स्ट बैलून फुलाएं, टाइम आप 5-10 मिनट का रखिए, उसके साथ आपके लंग्स की पूरी तरह से एक्सपेंशन होगी और आपके जो फेफड़े हैं उनके जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से स्ट्रेनिंग होना शुरू हो जाएंगे, इससे आपकी ब्रीदिंग में भी फर्क पड़ेगा। इसके बाद अस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए नेक्स्ट टिप है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, कि आप लोग अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स रखें, क्योंकि जब आपको एंग्जायटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, ऐसे केसेस में, अस्थमा के केसेस में सबसे ज़्यादा एंग्जायटी, घबराहट देखी जाती है, वो पैनिक हो जाते हैं 2-2 मिनट में, जैसे उनको सांस नहीं आता है तो वो अपनी सांस के लिए स्ट्रगल करते हैं। पैनिक ज़्यादा होने से आपके शरीर में बात का संकुचन हो जाता है, उसके साथ साथ सारे आपके मसल्स जो है वो कंट्रैक्शन में आ जाते हैं और उसके साथ बॉडी में अगर ऑक्सीजन हो भी तो भी लंग्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। इसलिए आपको हर परिस्थिति में पूरी तरह से शांत रहना जरूरी होता है। उसके लिए योगा में बहुत अच्छा एक प्राणायाम है जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस तरह के मरीज जो है सुबह या शाम 10 से 15 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। 10 से 15 मिनट का टाइम लें और उसको पूरी तरह से करना शुरू करें। ऐसा करने से आपके माइंड पे ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालेगा, आप हमेशा एक शांत स्वभाव में रहेंगे, पैनिक होने की जो आपकी आपका नेचर बन गया होता है उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप एक हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे, अवेयरनेस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रहेगी। सबसे बड़ी बात, अगर मैं साइंटिफिकली टर्म्स में बात करूं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा लेवल पे ऑक्सीजन जाएगी और आपके शरीर का कण कण उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा अपने काम करने के लिए। ऑक्सीजन के लिए आपको ग्रैस्प नहीं करना पड़ेगा और इससे आपका पूरी बॉडी मसल्स जो हैं वो पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे और शरीर में जो ऑड इवन प्राण वायु होती है वो पूरी तरह से बैलेंस स्टेट में रहेगी। तो उसके साथ आपके सारा शरीर जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे रहेगा। इसके बाद अब हम खाने की टिप्स पे आते हैं कि आप लोगों को हमेशा खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए। अस्थमा के केसेस में बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा ऐसा खाना खाएं जो कफ को कम करे और उसकी प्रकृति खाने में उष्ण हो, मीन्स गर्म हो, सो दैट आपकी बॉडी में जितना भी एयर इम्बैलेंस है, जैसे मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये बात और कफ के इम्बैलेंस की बीमारी है, तो जब आप खाना ऐसा खाएंगे जो कफ को कम करेगा और बात को भी हटाएगा तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा खाना है उसको इस कैटेगरी में रखने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप हमेशा ताज़ा खाना प्रेफर करें, हमेशा फ्रेश रोटी बनाएं, ताज़ा आटा गूंदें, ताज़ी ही सब्जी बनाएं, ताज़े ही सूप लें, ताज़े ही सैलेड लें, लेकिन सलाद को लेने का समय है दोपहर 2 बजे तक, उसके बाद आपने सलाद नहीं लेना है। फ्रूट्स जो हैं फ्रीज से निकाल के उसको गर्म पानी में डिप करके 5-10 मिनट रखें, नॉर्मल टेम्परेचर पे होने दें और फिर आप उसका सेवन करें। आप हर तरह के ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं काजू को छोड़ के, बाकी सारे ही ड्राई फ्रूट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। ताजे खाने का कंसेप्ट ये है कि आयुर्वेद ये कहता है कि जब खाना बन गया उसके 1 घंटे से लेके 3 घंटे के बीच बीच में उस खाने की जो ऊर्जा है जो एक्चुअली हमारी बॉडी को चलाने में हेल्पफुल रहेगी वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर पे होती है, जिसके साथ जो भी आप खाना ग्रहण करते हो वो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है और किसी भी बीमारी को पैदा नहीं करता। और जो ताज़ा खाना होता है उसमें वात पित्त कफ जो है वो पूरी तरह से उसको बैलेंस में रखने की एक अपनी ही शक्ति होती है। तो जब भी आप खाना खाएं बनाने के 3 घंटे के अंदर अंदर उसका उपयोग कर लें। ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ऑफिस से जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप कुछ अपना उसी हिसाब से मैनिपुलेशंस कर सकते हैं सो दैट आप खाने को अपने अकॉर्डिंगली आप अपने टाइम के हिसाब से उसको यूटिलाइज करें। दूसरी बात, ऐसे लोगों के लिए हमेशा गर्म या टेम्परेचर में गर्म वार्म फूड खाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के लिए कोई भी ठंडा खाना उचित नहीं है, क्योंकि जब भी आप ठंडा खाना खाएंगे वो हमेशा वात लेवल को बढ़ाएगा और जब जब वात आपके शरीर में बढ़ेगा तो आपको सांस छोड़ने में दिक्कत आएगी। जितने भी अस्थमा के केसेस हैं उनमें सांस लेने में दिक्कत नहीं आती, उनको सांस छोड़ने में दिक्कत आती है। जब आप इस तरह का फूड जो है अपनी लाइफ में चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे लेवल पे जो है उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। इसके साथ जब आप खाना खा ले तो नेक्स्ट टिप ये है कि आप छोटी छोटी जो हैं गोलियाँ बना के रखें, उसमें आपने आधी मात्रा में गुड़ लेना है और आधी मात्रा में आपने सौंठ, जिसको हम सूखी हुई अदरक का पाउडर, वो दोनों बराबर भागों में ले ले और उसको मिक्स करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बना ले, जैसे चने के दाने होते हैं उस हिसाब से गोलियां बना के आप किसी डिब्बी में रख लें और जब भी आपने खाना खा लिया तो उसके बाद 2 गोलियां लेके मुंह में रख के उसको धीरे धीरे चूसते चले। जब आप ये दोनों चीज़ें करेंगे, क्योंकि गुड़ और जो सौंठ है उसका नेचर थोड़ा सा वार्म है और वो कफ और बात के लिए बहुत अच्छा रहता है, जो भी आपने खाना खाया है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपका बात और कफ जो है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड में रहेगा, आपका पेट भरी नहीं रहेगा और आपको सांस लेने में दिक्कत भी नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह के जितने भी रोगी हैं वो सारे दिन में 2 बार भोजन करें और तीसरे टाइम जो है वो हल्का खाना लें, जैसे सूप ले सकते हैं या फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके बाद ऐसे पेशेंट्स डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। अगर आप कभी कभार लेना चाहते हैं तो सिर्फ गाय का हल्का दूध, लेकिन देसी गाय का दूध ही एडवाइज्ड होता है, दूसरा दूध नहीं। उसमें थोड़ा सा आप चाहे तो हल्का सा गुड़ डाल सकते हैं या इलायची डाल सकते हैं। इस तरह के अगर आप चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं और बात करूं, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से मैंने आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर ही दी है, खाने में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए और लाइफस्टाइल में ऐसी क्या चेंजेस आप लेके आ सकते हैं जिससे कि अस्थमा में बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे नवजात शिशुओं को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसमें वो खाना तो खाते नहीं है लेकिन फिर भी उन लोगों को इस तरह की दिक्कत है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा सुझाव ये है कि उनकी जो माताएं हैं वो अपने शिशुओं को अपनी फीड दें। अपनी फीड देने के साथ क्या होगा कि उन आपके बच्चों की इम्यूनिटी लेवल जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ेगी। उनको कोई भी बाहर का दूध या फिर जो पाउडर्स वगैरह आते हैं लैक्टेशन के लिए, वो कोई भी चीज़ या सेरेलैक ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे शुगर जो है वो मिक्स होती है, वाइट शुगर जिसको हम कह देते हैं, और वाइट शुगर हमेशा इन्फ्लेमेशन लाती है, और ऐसे केसेस में फेफड़ों का जो भाग है फेफड़ों में सूजन आ जाती है। कई बार सूजन करके भी ब्रीदिंग लेने में छोड़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है और ब्रीदिंग के अटैक्स होते हैं। इसलिए आप वाइट शुगर को टोटली ही बंद करने के लिए आप अपने बच्चों को, माताएँ अपना दूध पिलाएं तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करेगी। दूसरी बात, बच्चों को हमेशा, छोटे छोटे बच्चों को कोसा पानी दें, वार्म वाटर दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप छोटे बच्चों को पानी देना चाहते हैं तो आप उसको पहले बॉईल करके रख लें, छोटी इलायची आप उसमें डाल सकते हैं, उसके साथ उनका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। आई होप मैंने इस वीडियो में सारी ही तरह के नेचुरल टिप्स और आप अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं वो डिस्क्राइब किए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमसे किसी भी तरह के फीडबैक चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल में आपके किसी भी क्वेश्चन या आंसर को इलैबोरेट करूं, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।